हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 14, और ये अध्याय है किंग पुरुरवा इंचेंटेड बाय उर्वशी, है ना, कि जो राजा पुरुरवा हैं उनका आकर्षण हुआ स्वर की अप्सरा उर्वशी से। तो ये एक प्रेम कहानी है, ना, लव स्टोरी है। लेकिन ये लव स्टोरी कब की है? सतयुग की है। और ये आज भी लव स्टोरी बहुत चलती है, है ना। लव स्टोरी पे पूरी मूवीज बनती है, गाने बनते हैं, सैड सॉन्ग बनते हैं, है ना। तो कैसे राजा पुरुरवा प्रेम में गिर गए, है ना, फॉल इन लव, और कैसे वो फिर सैड सॉन्ग गाते हैं, है ना। तो भागवतम में सब कुछ है, है ना। भागवतम में एडवेंचर भी है, रोमांस भी है, लव स्टोरी भी है, है ना, एम्ब्रियोलॉजी भी है, साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, है ना। और लेकिन सब कैसे है, केंद्र क्या है? कृष्ण भावनामृत, है ना। जो बाहर जितनी भी लव स्टोरीज होती हैं, प्रेम कहानियां होती हैं, उसमें क्या होता है? हैप्पी एंडिंग होता है, है ना। वो विलेन होता है और जो एक्ट्रेस होती है उसको भाग ले जाता है, फिर जो हीरो जाता है 10-15 लोगों को एक साथ मारता है, है ना, और फिर वापस लेके आता है और अच्छा हैप्पी एंडिंग। लेकिन जो भागवतम में जो एंडिंग होगा लव स्टोरी का, वो कुछ अलग ही होगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं। श्री सुक उवाच, अथायता श्रूयताम राजन वंसा सोमस्य पावना यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तनयन्ते पुण्य कीर्तयः, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको सूर्यवंश के बारे में बताया है, सूर्यवंश में जो 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 राजा हुए हैं उनके बारे में बताया है। अब मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बताऊंगा, है ना, कि चंद्रवंश में कौन कौन से महान महान राजा आए हैं। और इन राजाओं में एक राजा था जिसका नाम था पुरुरवा, आइल, आइल उसका दूसरा नाम है, जिसकी जो गुणगान है बहुत सुनना, बहुत क्या है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही पुण्यशाली है। तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं अत्रि, अत्रि मुनि, है ना। अत्रि मुनि से जन्म होता है सोम का, चंद्र का, है ना। और जो सोम है, ब्रह्मा जी जो चंद्र है, चंद्रदेव है, उनको जितनी भी औषधियां हैं, है ना, जितने भी नक्षत्र हैं और जो ब्राह्मण हैं उनको उनको सुपरवाइज करना है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो फल है या सब्जियां हैं उसमें जो स्वाद है वो क्या है, चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं तो उससे जो फल है और सब्जियों में स्वाद आता है। प्रभुपाद बताए कि भगवद गीता में इस तरह दिया है कि सब्जियों और फल का स्वाद चंद्रमा से है। तो जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम चंद्रमा पे गए और वहां पे कुछ नहीं था, तो वो क्या है, तर्कहीन है। जिस ग्रह की वजह से दूसरी चीजों में स्वाद आ रहा है उस ग्रह पर कुछ भी नहीं होगा, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, जीव जंतु भी नहीं होंगे, है ना। तो ये क्या है, इलॉजिकल। फिर जो चंद्रमा है, मून है, ना, जैसे कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था कि देवी देवता भी तो भगवान को जानते हैं तो लड़ते क्यों आपस में, तो वो चंद्रदेव जो है वो क्या होता है, उनको अपना जो ऐश्वर्य है उस पर क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो बृहस्पति है, बृहस्पति की जो पत्नी है तारा, उनका अपहरण कर लेते हैं, और वो तारा को ले जाते हैं वहां से। और बाद में जब बृहस्पति को पता चलता है कि जो मेरी पत्नी है उसका अपहरण कर लिया गया है, तो सारे देवता जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। और जो चंद्रदेव है वो स्वयं वो भी देवता है, लेकिन क्योंकि अभी देवताओं से लड़ना है तो जो शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य और जो अन्य असुर हैं वो चंद्रदेव की तरफ हो जाते हैं, है ना। और दोनों में बहुत एकदम घमासान युद्ध होता है ना। हम देखते हैं कि एक स्त्री के लिए कितना, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे असुर, किसके लिए, एक स्त्री के लिए का जो मामला है उसको सुलझाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। ऐसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, एक्चुअली भौतिक जगत की बात है, पृथ्वी पर भी हम देख सकते हैं, है ना, कि स्त्री के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्ती टूट जाती है ना। बाद में युद्ध होता है और जब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, है ना, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आते हैं सुलझाने के लिए, है ना। और ब्रह्मा जी उस चीज़ को सुलझा देते हैं और जो उनकी पत्नी है बृहस्पति के पास वापस चली जाती हैं, लेकिन वो क्या है, जो तारा है वो गर्भवती हो जाती है ना। और उनके गर्भ में जो चंद्रदेव का संतान थी, है ना, तो जब पता चलता है कि चंद्रदेव की संतान है तारा के गर्भ में, तो जो बृहस्पति हैं वो बहुत क्या है, बहुत क्रोध होते हैं, बहुत, और उनको बहुत ही अपशब्द सुनाते हैं, है ना, कि तुम निर्लज्ज हो और अनचेस्ट, उल्टा हो, है ना, और तुरंत ही इस पुत्र को क्या है, डिलीवर कर दो। और बाद में ये जो जो पुत्र उत्पन्न होता है वो बहुत ही सुंदर था, है ना, बहुत ही गुणवान था। तो जब पता चलता है कि ये जो पुत्र है चंद्रदेव का है, तो जो चंद्रदेव है उस पुत्र को ले जाते हैं, और उस पुत्र का नाम होता है बुध, बुध। फिर आगे चल के जो बुध है, एक दूसरी स्त्री जो है इला, उससे विवाह करते हैं और उससे जन्म होता है पुरुरवा का, है ना। तो इस तरह से पुरुरवा क्या आते हैं, चंद्रवंश में आते हैं, है ना। ये चंद्रवंश के राजाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो एक बार क्या होता है कि जो पुरुरवा है अपने राज्य में बैठे होते हैं, और उस समय नारद मुनि वहां पर आते हैं। नारद मुनि क्या है, कैटेलाइजर है, है ना। कैटेलाइजर क्या करते हैं, रिएक्शन फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन तो होने वाला है उसको फास्ट कर देते हैं, है ना। तो जो इंसिडेंट होने वाला था कि जो पुरुरवा राजा को सबक सिखाना था, उसको नारद मुनि ने क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, है ना। एक्चुअली जो मूवीज हैं या सीरियल हैं, नारद मुनि को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि एक दूसरे को भिड़ाते हैं वो, है ना। वो क्या बहुत ऑफेंसिव है ना, बहुत अपराधजनक है। नारद मुनि क्या शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त, महान भक्त है, और इस तरह से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है ना कि नारद मुनि एक की बात दूसरी जगह फैलाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो नारद मुनि वहां पर आते हैं, और हाँ, नारद मुनि पहुंचते हैं स्वर्ग, और स्वर्ग में बताते हैं इंद्र के सामने कि पृथ्वी पर एक राजा है, उसकी सुंदरता, उसके गुण, उसकी उदारता, उसका व्यवहार, उसका धन, उसकी शक्ति बहुत 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 अधिक है ना। तो वहां पर जो जो इंद्र की सभा होती है, तो उसमें अप्सराएं बैठी होती हैं, तो उर्वशी भी बैठी होती है। तो उर्वशी जब सुनती है गुणगान राजा पुरुरवा का, तो क्या होता है, कामदेव अपना बाण चला देते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना। एक्चुअली होता नहीं है, वो माया कराते हैं ना, वो क्यूपिड कराता है, कामदेव कराते हैं। ध्याय तो विषयत पुंसा संगस्तेसु पजायते, है ना, कि जब हम किसी विषय वस्तु पर ध्यान करते हैं और उसको पाने की इच्छा करते हैं, तो क्या होता है, वो लस्ट उत्पन्न होती है, जनरेट होती है। तो जब केवल गुण सुने, है ना, राजा के गुण सुने, महानता सुनी, तो वो क्या होगा, उर्वशी को आकर्षण हुआ। जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक में कि जो दूत है जब जाता है विदर्भ, है ना, और विदर्भ में श्री कृष्ण के गुणगान करता है, तो जो रुक्मणी है उनको एकदम आकर्षण हो जाता है ना, कि यही कृष्ण जो है यही मेरे पति है, इन्हीं को मैं पति के रूप में स्वीकार करूँ और किसी को स्वीकार नहीं करूँ, है ना। तो जो सुनना है, सुनना, ये जो कान है, इतने महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, हम जैसे सुनेंगे वैसे बन जाएंगे, उसी चीज से आकर्षित हो जाएंगे, है ना। इसलिए शिष्य को गुरु दक्षिणा में सबसे पहले अपने कान देना चाहिए, है ना, कि कान हमने एक बार दे दिए तो बस सब कुछ हो गया, और कान नहीं दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसा हम सुनेंगे बस, जो जैसा श्रवण करेंगे वैसा कीर्तन करेंगे, मतलब जैसा हमने सुना तो उसी का गुणगान करेंगे, है ना। हमने कुछ मूवीज का सुना या कुछ सॉन्ग सुने तो वही हम गुनगुनाते रहेंगे। बाथरूम सिंगर होते हैं ना बहुत सारे, बाथरूम में जाके गाते रहते हैं। कैसे गाते हैं? क्योंकि उन्हें श्रवण किया है तो अभी कीर्तन कर रहे हैं, इतने गाने सुने हैं, इतनी मूवीज देखी हैं, तो वो ऐसा स्पॉन्टेनियस गाने निकलते हैं, है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हमने श्रवण अच्छी तरह किया है, शास्त्रों का, प्रभुपाद के लेक्चर अच्छी तरह सुने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या है, फिलॉसफी बाहर आएगी, श्लोक है या फिलॉसफी है वो अपने आप बाहर आएगा। अभी जो हम फिल्मी गाने ऐसे गुनगुनाते हैं तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो हमने सुना और गुनगुनाया, करेक्ट। तो इसी तरह वैष्णव सॉन्ग है, श्लोक है, फिलॉसफी है, उसको हम अच्छी तरह समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो निकलेगी। पूछते हैं प्रचार कैसे करें, प्रचार कैसे करें, प्रचार जिसने, जो श्रवण अच्छी तरह करेगा वो कीर्तन अच्छी तरह कर पाएगा, जिसने सुना अच्छी तरह है वो अच्छी तरह कीर्तन कर पाएगा, और प्रचार के लिए और कोई टेक्निक नहीं है। तो उसने सुना उर्वशी ने, और वो एकदम से वो आकर्षित हो गई, है ना। तो उर्वशी को कोई मित्र और वरुण का श्राप था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उर्वशी को पृथ्वी पर आना था, और जैसे एक पृथ्वी पर मनुष्यों की जो क्रियाएं होती हैं उस तरह से उर्वशी को व्यवहार करना था, है ना। तो जब उर्वशी यहाँ पर आई तो पुरुरवा को देखा, है ना, तो एकदम से वो क्या हो गई, हम बोलते आंखें चार हो गई। और जैसे ही पुरुरवा ने देखा उर्वशी को, है ना, तो एकदम से फूला नहीं समाया, है ना, आंखें एकदम खुली रह गई उसकी, और उसके जो मतलब अश्रु कंपन, है ना, उसके बाल खड़े हो गए, और एकदम से बहुत ही मधुर भाषा में उसने बोला, है ना। तो कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना बड़ा शक्तिशाली हो, जैसे स्त्री आती है तो स्त्री के सामने बिल्कुल तुरंत आज्ञाकारी बन जाता, है ना। तो पुरुरा राजा बोलते हैं, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन, यू आर वेलकम, है ना, कि बहुत सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर स्त्री, आपका स्वागत है, प्लीज सिट हियर, यहाँ बैठिए, एंड टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। यू मे एंजॉय विथ मी एज लॉन्ग एज यू डिजायर, है ना, आप मेरे साथ भोग कर सकती हैं जितने, जितना आपको, जितने समय तक आप इच्छा करती हैं, है ना। तो फिर उर्वशी वाच, फिर उर्वशी बोलते हैं कि ओ मोस्ट हैंडसम मैन, है ना। क्या होता है, विवाह के पहले सब चंद्रमुखी सूर्यमुखी दिखती हैं, चंद्रमुखी है, है ना, चांद सा चेहरा है, अल्लाह ने किसने बनाया, अभी अल्लाह भी नहीं बोलेंगे क्योंकि नास्तिक हो गए, सेक्युलर हो गए, तो अल्लाह ने बनाया वो भी नहीं बोलेंगे, या भगवान ने बनाया वो नहीं बोलेंगे, है ना। तो ओ मोस्ट हैंडसम मैन, है ना, हु इज द वुमेन हुज माइंड एंड साइट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय यू, है ना, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन और आंखें तुम्हारे द्वारा आकर्षित नहीं होगी, है ना। और अगर कोई स्त्री तुम्हारी शरण ग्रहण करती है, है ना, तो वो तुम्हारे साथ संग करने के लिए, भोग करने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकती, है ना। तो ये भौतिक जगत का प्रेम है कि हम किससे आकर्षित होते हैं, ये जो लस्ट है वो काम वासना क्या है, एक स्किन डिजीज है, है ना, चर्म रोग है, है ना। अभी कोई सुअर से आकर्षित नहीं होगा, है ना, या सुअरनी से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन सुअर सुअरनी से आकर्षित होगा, ऐसा क्या है? ऐसा उस सुअरनी में क्या है? यह कुत्ता है वो विच कुतिया है उससे आकर्षित होगा, तो ऐसा मतलब क्या आकर्षण का है क्या? और वही अगर मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, उसको कोई सुअर देखेगा या कुत्ता देखेगा तो वो आकर्षित होगा? नहीं होगा। तो ऐसा मतलब सुंदरता है क्या? ये क्या है? भगवान की क्या इल्यूजरी पोटेंसी है ना, माया देवी। और ये जो आकर्षण है ये हर योनि में है ना, खासकर युवा अवस्था में ये जो आकर्षण है वो बहुत ही स्वाभाविक लगता है ना, बहुत ही नेचुरल लगता है। ऐसा लगता है बस यही जीवन है। अगर इसके विपरीत कोई बोल रहा है तो बोला है तुम तो एबनॉर्मल बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, सटिया गया हो गया, तो बहुत नेचुरल चीज है तो, है ना। तो ये नेचुरल क्या है? ये पशुओं में नेचुरल है, सुअर में थे तब भी नेचुरल था, कुत्ते में थे तब भी नेचुरल था, कीड़े में थे तब भी नेचुरल रहेगा, इंद्र हो गए तब भी नेचुरल हो जाएगा, है ना। तो ये हर योनि में स्वाभाविक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं करने वाले। जो कई योनियों में करते आए हैं वो इसी योनि में भी वही कर रहे हैं, है ना, कोई अंतर नहीं है, है ना। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम, है ना, कि जो मैथुन सुख है वो क्या है? तुच्छ, बहुत ही तुच्छ। ये क्या है? खुजली जैसे है, जैसे आपको खुजली हुई है, शरीर में खुजली हुआ और आप उसको खुजाए जा रहे हैं तो क्या होगा? वो पूरा लाल हो जाएगा और कभी खून निकलने लगेगा, है ना। लेकिन अगर उस खुजली को आपने टॉलरेट कर लिया, सहन कर लिया, तो क्या होगा? वो खुजली समय के साथ चली जाएगी। तो जो लस्ट है, काम वासना है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में इतने भोग करने की इच्छा है, तो जब मन और शरीर इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो काम वासना ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो बच्चे हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन जैसे युवावस्था आती है, टीनेज आता है, और ये खासकर 20-25 साल की जो उम्र आती है उसमें ऐसा लगता है स्वतः आ गई, आत्मा में थी, आत्मा में नहीं थी, वो मन में क्या थी, छुपी हुई थी। और वैसे उसको शरीर और मन मिला और वो इन्वायरमेंट मिला, तो तुरंत ही वो काम वासना बाहर आ जाती है ना। लेकिन क्या है, बस स्किन डिजीज है ना, केवल 2 mm की सुंदरता है वो, 2 mm की, है ना। जैसे आलू है या आप ये लौकी को आप छीलेंगे तो वो छिलनी होती है ना, छिलनी से छीलते हैं तो उसका छिलका निकल जाता है। ऐसे ही कोई मिस वर्ल्ड को आप छिलनी से छील दीजिए, उसकी वो 2 mm की जो लेयर है स्किन की वो निकाल दीजिए, को फिर कोई उसको देखेगा? आप जाएंगे ऐसे कसाई घरों में जाएंगे तो क्या होता है, ये जो खासकर ये सुअर है या मुर्गियां हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और खाल को निकाल देते हैं, स्किन को निकाल देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। अभी वो मुर्गी में सब कुछ है लेकिन क्या है, स्किन नहीं है, है ना। मिस वर्ल्ड विदाउट स्किन है ना, मिस यूनिवर्स विदाउट स्किन। तो ये क्या है, ये आकर्षण क्या है? जस्ट एक स्किन का आकर्षण और कुछ भी नहीं है, है ना। तो लेकिन ये आकर्षण क्या है, इसी आकर्षण से पूरी दुनिया घूम रही है। ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है इसकी वजह से पूरा जगत चल रहा है और किसी की वजह से नहीं चल रहा है, है ना। फिर उर्वशी है, शर्त रखती है, है ना, कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ भोग करूंगी। क्या शर्त है? बोलती मेरे पास ये 2 मेमने हैं, छोटे से क्या हैं, भेड़ के बच्चे हैं, मेमने हैं, तो इनको क्या है, ये मेरे बच्चे जैसे हैं, तो इनको क्या है, आप बिल्कुल संभाल के रखना, है ना। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग यू एज माई हस्बैंड फॉर यू आर सुपीरियर इन एवरी रिस्पेक्ट, है ना। फिर वो बताती है कि दूसरी शर्त क्या है, कि जो भी खिलाओगे वो घी में बना होना चाहिए, है ना, जो भी है घी में बना होना चाहिए। तो स्वर्ग के लोग डालडा तेल यूज नहीं करते हैं, है ना। आगे प्रभुपद आत्मा लिखेंगे। तो पहली शर्त क्या है, कि ये जो 2 मेमने हैं इनको आप बिल्कुल संभाल के रखना, अच्छी तरह से रखना। दूसरी शर्त क्या है, कि घी में बनी हुई चीजें खिलाना, और तीसरी शर्त क्या है कि कभी भी निवस्त्र मत रहना, है ना, किसी भी अवस्था में निवस्त्र मत रहना, है ना। तो वो जो पुरवा है उसने स्वीकार किया, प्रपोजल स्वीकार कर दिया, है ना। तो जैसे प्रपोज करते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, ऐसी प्रपोजल हो गया आपस में, है ना। तो प्रुरा ने बोला यस, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल वन, योर ब्यूटी इज वंडरफुल एंड योर जेस्टर्स आर ऑल्सो वंडरफुल। इंडीड यू आर अट्रैक्टिव टू ऑल ह्यूमन सोसाइटी, देयरफॉर सिंस यू हैव कम ऑफ योर ओन अकॉर्ड फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट्स, हु ऑन अर्थ वुड नॉट एग्री टू सर्व ए डेमी गॉडेस सच एज यू, है ना। तो वो जो पुरुवा है वो पूरी तरह से बस बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। उसको पता नहीं है कि कितना एक बड़ा वंश है, चंद्र वंश में आया है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा राज्य करना है, लेकिन जैसी सुंदर स्त्री मिली सब सब खत्म हो गया, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वर्ग के लोग मांस अंडे, है ना, ये सब नहीं खाते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो पृथ्वी से ऊपर है ना। और आजकल की जो सिविलाइजेशन है ना, टॉपलेस बॉटमलेस हाफ नेक्ड ऑलमोस्ट नेक्ड, है ना, खासकर वेस्ट में। तो मतलब ये सिविलाइजेशन कैसा है, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं ना कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन, कुत्ते और बिल्ली की सभ्यता है ना। तो उर्वशी क्योंकि स्वर्ग से है ना, तो स्वर्ग में एक एटिकेट्स हैं, भोग करने के भी एटिकेट्स होते हैं, है ना, कि वहाँ पर कोई अनड्रेस्ड, है ना, निवस्त्र नहीं रहेगा, नेकड नहीं रहेगा, और घी से बने हुए चीज़ें खाएगा, मतलब सतोगुण में। जैसे पृथ्वी पर रजोगुण है, स्वर्ग में सतोगुण है, और पृथ्वी से नीचे लोगों में तमोगुण है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू, है ना। तो अभी देखिए कि ये बातचीत किसमें हो रही है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के बीच में। सुखदेव गोस्वामी कौन है, जो जब से जन्म हुआ है तब से मुक्त है ना। वो अपने माता के गर्भ में है कितने साल, 16 साल। तो माता के गर्भ से निकलने नहीं चाहते। व्यास देव आए उनके पिताजी, बोले गर्भ से बाहर तो आओ, बोले बाहर आऊंगा इतनी माया है, पकड़ लेगी माया, इसलिए घर में रहूंगा। तो भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आए, आश्वासन देने, नहीं माया से प्रभावित नहीं हो। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी घर से बाहर आए तो तुरंत चले, घर से तुरंत बाहर, है ना। तो जन्म से ही क्या है, वो मुक्त पुरुष है, लेकिन वो सब ये डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है ना, इसमें भौतिक जगत की क्या है वास्तविकता है, अभी आएगी। फिर क्या हुआ, जो पुरुरा राजा और उर्वशी दोनों ऐसे अलग अलग वनों में नंदन कानन में ऐसे भोग करने लगे, एंजॉय करने लगे, है ना, जैसे मूवीज में होता है ना, मिल गए दोनों एक्टर एक्ट्रेस मिल गए, अभी घूम रहे हैं, है ना, वर्ल्ड टूर पे चले गए हैं। फिर उर्वशीज बॉडी वाज एज फ्रेग्रेंट एज द सेफ्रॉन ऑफ ए लोटस। जो उर्वशी का जो शरीर की सुगंध थी वो कैसी थी, जो कमल होता है, कमल कमल की जो खुशबू होती है उसकी तरह उसकी सुगंध थी। बींग एनलाइवेंड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ हर फेस एंड बॉडी, पुरुरवा एंजॉयड हर कंपनी फॉर मैनी डेज विद ग्रेट जुबिलेशन, है ना। फिर एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने देखा कि अरे उर्वशी तो है ही नहीं यहाँ पर, उर्वशी कहाँ चली गई, है ना। तो इंद्र को चिंता हुई, तो इंद्र ने बोला कि उर्वशी के बिना तो सब जीवन अधूरा है, है ना, ये पूरा जो असेंबली है वो पूरी क्या है, पूरी खाली खाली लग रही है ना। जैसे चेतन महाप्रभु शिष्टाष्टकम बोलते ना, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि गोविंद के विरह मुझे पूरा जगत शून्य लग रहा है ना। तो अगर उसका हम विकृत पृथ्वी में देखें तो मुझे वो जो जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो है ही नहीं, तो पूरा निराश हताश, खा भी नहीं रहे हैं, है ना, रात में चैन नहीं है, दिन में रात में नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, है ना, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसे तो भक्ति करने के बाद भी नहीं होती, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कि रात में नींद नहीं आ रही, प्रभु जी बहुत सेवा है, बहुत टेंशन है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, हो ही नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही। भक्ति में तो आराम से प्रसाद लिया, फीस लिया, ऐसे सोए के उठाने जाना पड़ रहा है ना, तो रात में नींद नहीं आ रही है इंद्र को, है ना। तो इंद्र ने बोला कि गंधर्व आप लोग जाओ और उर्वशी को लेके आओ, है ना। तो जो गंधर्व है वो जाते हैं नीचे पृथ्वी लोक पे जाते हैं, और अर्ध रात्रि में जाते हैं, है ना, मिडनाइट में जाते हैं, और क्या करते हैं, जो पुरुरवा के पास में जो दो मेमने थे उनको चुरा लेते हैं, है ना, गंधर्व उनको चुरा के ले जाते हैं। तो जैसे ही पता चलता है उर्वशी को कि दो मेमने हैं वो चोरी हो गए हैं, तो बस फिर तो अभी उर्वशी बताएंगे कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है ना। उर्वशी ट्रीटेड द टू लैम्स लाइक हर ओन सन्स, और जब देखा कि गंधर्व ले जा रहे हैं वो बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है, है ना, और बोलती है कि तुम दर्पोक, नपुंसक, है ना, यूनक, है ना, लिखा है इसमें, मैंने अपना अपना खुद नहीं बोल रहा हूं, अनवर्दी हस्बैंड हु इज ए कावर्ड एंड यूनक ऑल्दो ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट हीरो। एक क्षत्रिय को डरपोक बोलना और क्षत्रिय को नपुंसक बोलना, वो तो गर्म हो जाएगा पूरा। अगर बेस में ही हम एक दूसरे को किसी को बोल दिया ऐसा कुछ अपशब्द बोल दिया तो कितना गर्मा गर्मी हो जाती है, है ना। बाहर की दुनिया में देखो आप, है ना, बस में सीट के पीछे, ट्रेन में सीट के पीछे थोड़ा सा कुछ अपशब्द बोल दिया तो कितना। तो एक क्षत्रिय को ऐसा बोलना कि डरपोक, है ना, नपुंसक, तो कितना उसको पूरा हृदय में चुभ गई होगी बात, है ना। बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर थी और ये जो लुटेरे हैं, ये मेरे जो पुत्र थे मेमने, उनको चुरा के ले गए, है ना, और तुम एक स्त्री की तरह हो बस, मतलब अपने आप को बोलते पुरुष हो लेकिन स्त्री की तरह, है ना। कई बोलते ना चूड़ी पहन के बैठ जाओ तो ऐसे वो पूरा ऐसा प्रहार कर रहे हैं, है ना, कि तुम बस स्त्री की तरह। तो जैसे ही पुरुवा ने इस एकदम हार्स और शार्प शब्द सुने उर्वशी के, है ना, तो ऐसा प्रहार हुआ जैसे एक हाथी को किसी लोहे की रॉड से उसके शरीर पर मारा गया, है ना। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने देखा नहीं कि मैं कपड़े पहना हूं नहीं पहना हूं, और वो तलवार लेकर बाहर चला गया। और जैसे ही वो बाहर गया तो गंधर्वों ने तुरंत वो मेमने लौटा दिए, और जैसे ही मेमने वापस आ गए तो गंधर्वों ने क्या किया, एक तेज लाइट प्रकाश किया, है ना, और जैसे वो प्रकाश किया तो वो जो पूर्व राजा था उसने कुछ वस्त्र पहने नहीं थे, है ना, और मेमने को लिया हुआ था। तो जो उर्वशी है, उर्वशी ने देखा कि मेमने को वापस लेके आ रहा है लेकिन वो क्या है, उसने वस्त्र नहीं पहने, तो वो छोड़ के चली गई। अभी सैड स्टोरी चालू है, है ना। तो जब उर्वशी वहां से चली गई तो पूर्वा का, है ना, शीशा हो या दिल हो, आंखें टूट जाता है, है ना। वैसे ही पूर्वा का जो हृदय है पूरी तरह से टूट गया, और इतना ज्यादा परेशान हो गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया, और पूरी पागल पागलों की तरह पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था, और ऐसे घूमता रहा काफी समय हो गया। तो एक बार देखा, पूर्वा ने देखा कि उर्वशी जो है स्वर्ग के चार एक पुरुष हैं उनके साथ कहीं पर ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, है ना। और जब पूर्वा ने देखा कि उर्वशी आई है तो उसके एकदम बहुत प्रसन्नचित हो गया, अरे इतने समय के बाद है ना। तो उसने बोला कि थोड़ा कुछ समय के लिए रहो यहाँ पर है, और इसे इस तरह मुझे छोड़ के मत जाओ। और कोई बिना किसी कारण के तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई है ना। ठीक है तुमको जाना है तो थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं, थोड़ा मुझसे बात तो करो है ना। इस पर भी मूवी बनना चाहिए ना। ओ गॉडेस नाउ यू हैव रिफ्यूज्ड मी है ना, तुमने मुझे त्याग दिया है ना, मेरा जीवन पूरा नीरस हो गया है ना। और मैं तो चाहता हूं कि मेरा शरीर जो है लोमड़ियां हैं और जो गिद्ध है वो खा जाए, मेरे शरीर का कोई उद्देश्य ही नहीं है ना। तो उर्वशी बोलती है, अभी उर्वशी बताएंगी यहां पर कि एक जो स्त्री है उसका हृदय कैसे होता है, उसका स्वभाव कैसे होता है। तो एक्चुअली शास्त्रों में और इन जनरल बताया गया है इस टॉपिक से आने से पहले कि जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, जैसे कुंती महारानी बोलती है, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यामि स्त्रिया है ना, कि जो भक्ति योग है जो अध्यात्म विषय है उसको कौन समझ सकता है, परमहंस लोग समझ सकते हैं जो शास्त्रों में बहुत निपुण है। लेकिन हम जो स्त्रियां हैं जिनकी जो बुद्धि है इतनी विकसित नहीं है तो हम आपको कैसे समझ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कहीं भी कोई अगर धार्मिक कुछ कार्यक्रम होता है, एक मंदिर है या कहीं भी ऐसे कुछ फंक्शन होता है, वहां पर अधिक मात्रा में स्त्रियां आती, पुरुष कम आते हैं। क्योंकि स्त्री में क्या गुण होता है, सिंप्लिसिटी का, सरलता का गुण होता है ना। तो सरलता के गुण की वजह से वो तुरंत ही वो क्या है, धार्मिक अनुष्ठान है ना, ये आध्यात्मिक क्रिया है, उससे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। और मंदिरों में भी देखते हैं प्रोग्राम्स होता है तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या कम होती है ना। तो स्त्रियों में जो एक नेचुरल एक जो एक्चुअली भगवान के परिप्रेक्ष्य में सब स्त्री है, भगवान पुरुष है और हम सब क्या है, प्रकृति है ना। तो वास्तव जो एक सही स्त्री में गुण होना चाहिए वो एक शिष्य में भी गुण होना चाहिए है ना। जैसे पति पत्नी का संबंध है उसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध है ना। तो शिष्य का गुरु के प्रति जैसे व्यवहार होता है उसी तरह से एक पत्नी का पति के प्रति होता है। तो अगर पत्नी में वो जो गुण है ना, एक आदर्श पत्नी में जो गुण है हम देखेंगे, वो एक शिष्य में होना चाहिए है ना। जैसे पहला गुण है सबमिसिव, विनम्रता। तो ये गुण स्त्रियों में जनरली होता है, अभी वो फेमिनिज्म चल रहा है जो स्त्रियां भी पुरुष के समान बनने चाह रही हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं है ना। जो वास्तव में जो स्त्रियां हैं है ना, सही मायने में, तो सबमिसिव, तो ये शिष्य में भी होना चाहिए। डिपेंडेंट, निर्भर होना, निर्भर होने का गुण तो स्त्री में होता है, किसी न किसी की शरण लेना चाहती है ना, या तो अपने पिता की है ना, या अपने पति की, या अपने पुत्र की, किसी न किसी की शरण लेना चाहती है। तो एक शिष्य का भी गुण होता है, डिपेंडेंट। फिर ट्रस्टिंग, विश्वास करना है ना। पुरुषों में ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं करते जल्दी किसी पर, लेकिन स्त्रियां क्या है, तुरंत किसी पर ट्रस्ट कर लेती। और अगर सही व्यक्ति पर ट्रस्ट किया, सही जगह ट्रस्ट किया, तो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। फिर इफेसिंग है ना, कि अपने आप को प्रमोट नहीं करना, या जाना अपने आप को शो नहीं करना, बैकग्राउंड में रहना, साइनेस, लज्जा। तो ये स्त्री में क्या होते हैं, स्वाभाविक गुण होते हैं है ना, कि बैकग्राउंड में रहना है, अपने आप को शो नहीं करना है ना, अपने आप को ज्यादा दिखाना नहीं है, ऐसा पीछे रहना है ना। तो एक शिष्य में भी ये नेचुरल क्वालिटीज होना चाहिए है ना। फिर सिंप्लिसिटी, सरलता, सरलता का गुण होता है। फिर सरेंडर, वो तुरंत उनको अगर अच्छी तरह से बताया जाए तो मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है तो पति की हमने शरण लिया है, संतुष्ट है ना। और तो ये सब गुण एक शिष्य में भी होना चाहिए, है ना, विनम्रता है, निर्भर होना है, शरण लेना है, सरलता है ना, विश्वास करना है, तो ये शिष्य में भी क्वालिटीज होना चाहिए। फिर अगर स्त्री किसी से प्रेम करती है तो पूरी पूरी तरह से अपने आप को, पूरा हृदय से उसको अपने आप को दे देती है, करेक्ट। तो एक शिष्य को भी होना चाहिए कि अपने आप को पूरे हृदय से अपने आप को गुरु को दे देना चाहिए, है ना, गुरु और कृष्ण को अपना पूरा हृदय दे देना चाहिए, है ना। तो ये नेचुरल क्वालिटीज हैं, और जो स्त्री में होती है शिष्य में होना चाहिए। लेकिन मैस्कुलिन क्वालिटीज क्या है, डोमिनेट करना, है ना, सामने वाले को डोमिनेट करना कि मैं ऊपर हूं तुम नीचे हो, एग्रेसिव, है ना, और आउटगोइंग, है ना, आउटगोइंग मतलब वही सो, है ना, मैं आगे हूं बाकी लोग पीछे हैं, है ना। लेकिन स्त्री क्वालिटी क्या है, आर्ट, फाइननेस, कल्चर, फीलिंग्स, है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं तो सेंटिमेंटल, भक्ति आंदोलन क्या है, सेंटिमेंटल लोगों के लिए, लेकिन सेंटिमेंटल प्योर सेंटिमेंट के लिए, सेंटिमेंटल लोगों के लिए नहीं, भावुक लोगों के लिए नहीं, जिनमें शुद्ध भाव है उनके लिए, है ना। तो वास्तव में जो एक सही स्त्री है, जो फिर शिष्य है, उनमें एक गुण होना चाहिए। लेकिन अगर इन गुणों को सही रूप से चैनलाइज नहीं किया गया, इन गुणों को सही तरह से विकसित नहीं किया गया, एक सही ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगाया गया, तो बिगड़ जाती, जिसको बोलते पुंसली, है ना, वैश्या, प्रोस्टिट्यूट, है ना। तो अभी जो उर्वशी है, जो स्त्री का जो हृदय है उसके बारे में बताएंगी, वो किसके बारे में बता रही है, ऐसी स्त्रियों के बारे में जिनमें ये गुण नहीं है, है ना। तो हम समझ, उससे हम ये भी जान सकते हैं कि अगर शिष्य है और शिष्य में ये गुण नहीं है तो वो शिष्य भी क्या है, शिष्य कहलाने लायक नहीं है, है ना। तो उर्वशी क्या बोल रही है, माई डियर किंग, यू आर ए मैन, ए हीरो, है ना, पुरुष है आप, हीरो हैं, डोंट बी इम्पेशेंस, अपना धैर्य मत खो, एंड गिव अप योर लाइफ, है ना, बी सोवर, सोवर बनो, है ना, धैर्यवान बनो। यू शुड नो दैट द हार्ट ऑफ द वुमेन इज लाइक दैट ऑफ ए फॉक्स, स्त्री का शरीर, स्त्री का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, लोमड़ी की तरह होता है, है ना। देयर इज नो यूज मेकिंग फ्रेंडशिप विथ वुमेन, तो स्त्री के साथ मित्रता करने का कोई भी अर्थ नहीं है, है ना। ये कौन बोल रहे, उर्वशी बोल रहे, चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, विश्वासु नैव कर्तव्य स्त्री सु राज क्लेशु, दो लोगों पर कभी विश्वास नहीं करने से, किन किन पर, पॉलिटिशियन पर और स्त्री पर, इन दोनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। पॉलिटिशियन भी ऐसे अपनी बात बदलते रहते ना, बात हमेशा चेंज करते रहते, चुनाव आएगा उससे पहले सारा विकास उसी समय होता है, उसी समय रोड बनती है, उसी समय से पॉलिसीज आती हैं। तो जो स्त्री का माइंड क्या होता है, अगर प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो बहुत क्या होता है, फ्लिकरिंग होता है, बहुत बदलता रहता है हमेशा, कभी ये कभी वो कभी ये। ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वेन वन इज एलिवेटेड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेदर वन इज ए मैन वुमेन शूद्र एवरीवन इज इक्वल, है ना। अगर कृष्ण भावना मत के स्तर पर देखें तो स्त्री है, पुरुष है, शूद्र है, वह है, सबको भक्ति करने का एक समान अधिकार है, सबको भगवत धाम जाने का एक समान अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है ना। लेकिन अगर हम सोशल स्तर पर देखेंगे, है ना, एक सोशल डीलिंग में देखेंगे तो दोनों में अंतर है ना। अगर सोशल सामाजिक स्तर पे हम उनको इक्वल बनाना चाहेंगे तो ये स्थिति हो जाएगी, हृदय ऐसा हो जाएगा लोमड़ी की तरह, है ना। तो चाणक्य पंडित श्लोक बोलते हैं कि इस व्यक्ति एक व्यक्ति है उसको घर त्याग देना चाहिए। किस व्यक्ति को? अगर उसके घर में दो चीजें हो रही, क्या? माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माँ नहीं उसकी, और भार्या चा प्रियवादिनी, जिसकी पत्नी उससे प्रेम से बात नहीं करती, उसको घर छोड़ देना चाहिए। क्यों? चाहे वो घर में रहे जंगल में रहे, बात एक ही है। अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम, है ना। तो आप देखेंगे कि आज ऐसा मैरिज होता है तो दोनों जॉब पे जाते हैं, और मान लीजिए जो स्त्री है उसका क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जाना है और उसकी सैलरी जाना है, तो यही होने वाला है। अभी से आपको वार्निंग दे देता हूँ, है ना। अगर तो सुनने नहीं वाले, सैलरी आते, मैं भी तो घर चला रही हूँ। पहले घर वाली बोलते थे ना, अभी ऑफिस वाली हो गई। तो तुरंत वो जितना ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन आएगा स्त्री में, उतना ज़्यादा घर नरक बन जाएगा, जितना ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन आएगा। आप देखेंगे पहले जो स्त्रियाँ होती थी, या आपके घर में आपकी मदर है या ग्रैंड मदर है, तो शायद इतनी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन घर बहुत अच्छा चलता है ना, घर बहुत बढ़िया चलता था। कभी ऐसा नहीं कि क्लेश हो रहा है ना, और माता पिता कभी बच्चे के सामने लड़ेंगे नहीं, है ना। आज तो क्या होता है, आजकल तो सब कोई शिष्टाचार जैसा रह ही नहीं, है ना। तो जितना ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन आएगा, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उससे क्या होगा, घर उतना ही ज़्यादा वो परेशान है ना। आजकल डे बोर्डिंग स्कूल हो गए, है ना। हम गए थे ना डे बोर्ड, तो वहीं पर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, वहीं पर लंच मिलेगा। अभी जो बच्चा लंच और ब्रेकफास्ट खा रहा है, वो किसका खा रहा है? ऐसे लोगों का बना खा रहा है जिसमें कोई स्नेह नहीं है, है ना, जिसमें कुछ मतलब स्नेह की कोई भावना ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे बनेगा? लेकिन माँ जब स्नेह से बनाएगी, स्नेह से खिलाएगी, तो बच्चे में क्या है, वो देवी गुण विकसित होंगे। तो ये क्या है, मॉडर्न पूरा कल्चर, जो मॉडर्न एजुकेशन है पूरा, एकदम सब कुछ, परिवार है जिसका जो स्थिति है, गुण है, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, है ना। हितवात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतोयम धर्म आश्रित। तो ये जो गृहमेदी जीवन है या गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम गृहमेदी जीवन, वो क्या है, अंधे कुएं की तरह, अंधा कुआ, है ना। वनम गतो या धर्म आश्रित, बन चले जाओ, है ना। फिर बोल रहे कि स्त्री कैसे होती है, मर्सीलेस, निर्दयी और कनिंग। कनिंग मतलब चालाक, है ना, लोमड़ी होती है ना चालाक, वैसे अंगूर नहीं मिलेंगे तो अंगूर खट्टे हैं, है ना। और एक्चुअली स्त्री उन्हीं उसको मिलती है जिसको भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती, जिसकी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा। पुरुष शरीर क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अनुकूल है। स्त्री शरीर भी है, क्योंकि हमने देखा इतने गुड़ जो होते हैं, अगर उसको सही तरह से ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सही तरह से ट्रेन नहीं किया जाएगा तो ये उनमें क्या होता है, द्वेष बहुत होता है आपस में, है ना। आपस में दो लोगों की बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती। ये उसके पुरुषों में अगर झगड़ा होता है, थोड़ा झगड़ा होगा, मारपीट होगा, फिर आपस में फिर सुलझ जाएगा। स्त्री में क्या है, अरे तुमने एक साल पहले, दो साल पहले इतना ये हुआ था और ये किया था, वो किया था, सब, है ना। लेकिन अगर भक्त है, कृष्ण भावनामृत में है, तो धीरे धीरे उस चीज से निकल सकते हैं, है ना। जितने अनुपात में भक्ति करेंगे, उतने अनुपात में इन सब अवगुणों से निकल जाएंगे, है ना। फॉर देयर ओन प्लेजर दे कैन डू एनीथिंग इरिलीजियस, है ना। कि उनको जिसमें आनंद प्राप्त होगा उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, है ना। इस हद तक जा सकती है कि वो अपने पति या अपने भाई को भी मार देंगी, है ना। और बता रहे कि उनको थोड़ा सा भी कुछ भी अपराध हो या किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता उनको, है ना। गौरव ऐसा क्या करता उनको क्या है, बिल्कुल भी क्या है, थोड़ा भी अपराध सहन नहीं होता, किसी ने कुछ थोड़ा ही बोल दिया, है ना। वुमेन आर वेरी इजीली सीड्यूस्ड बाय मेन, है ना, उनका शोषण ही बहुत जल्दी हो जाता है पुरुषों के द्वारा। अगर पतिव्रता का गुण नहीं है तो शोषण ही बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। देयर फॉर पॉल्यूटेड वोमेन गिव अप द फ्रेंडशिप ऑफ ए मैन हु इज देयर वेलविशर, है ना, एंड एस्टेब्लिश फॉल्स फ्रेंडशिप अमंग फूल्स, है ना। तो जो वेलविशर है, जो उनके हितैषी है, उस स्त्री उनको छोड़कर मूर्ख लोगों से मित्रता कर लेगा, है ना, और हमेशा नए 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 नए, है ना, नए अब ये पार्टनर वो पार्टनर ये पार्टनर, है ना, ऐसा। और अंतिम में क्या होता है, वो अकेली होती है, उनके राइट्स होते हैं और कुछ नहीं बचता। फिर इस तरह से वो अपने बताती हैं, फिर वो पुरुणा राजा को बोलती हैं कि ठीक है, आप इतने अधीर मत हो, है ना, इतने परेशान मत हो, पूरे साल में एक दिन मैं आपके साथ में आऊंगी, है ना, और आपके साथ भोग करूंगी, है ना। इसके बाद पुरुणा राजा चले जाते हैं और एक साल होता है तो उर्वशी को संतान होती है, और पुरुणा राजा आता है उसको, है ना, वही बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि अभी वो दिन आने वाला है, दिन आने वाला आने वाला है। और वहाँ पर फिर उर्वशी वापस आती है, है ना। तो लेकिन उर्वशी आने से पहले क्या करती है, गंधर्वों को बोलती है कि ये दूसरी स्त्री उसको ले जाओ, इसका नाम था अग्निस्थली, अग्निस्थाली, है ना, उसको ले। वो केवल बिल्कुल उर्वशी जैसे दिखती थी, है ना। तो वो जो दूसरी स्त्री थी वो आती है पुरुणा राजा के पास में, लेकिन पुरुणा राजा समझ जाते हैं कि उर्वशी नहीं है, है ना, और उनको फिर बहुत दुख होता है, है ना, बहुत पश्चाताप करते हैं। और फिर जब ये पश्चाताप करते हैं और उन्होंने फिर यज्ञ चालू करते हैं, तो ये जो घटना है सतयुग और त्रेता युग के बीच की घटना है। तो जब जैसे वो यज्ञ करना चालू करते हैं तो सतयुग से त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है। तो ये पुरुणा राजा से ही सतयुग से त्रेता युग चालू, है ना। तो जब वो देखते हैं कि उर्वशी ने बोला था और उसने इस चीज को, अपना जो वादा है उसको निभाया नहीं, और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो फिर एक सैड सॉन्ग आते हैं, वो सैड सॉन्ग हम कल सुनेंगे, है ना। उसके जो लिरिक्स हैं इतने अच्छे हैं, है ना, अभी जो लोग लिरिक्स बनाते हैं, है ना, उससे कई गुना इंस्ट्रक्टिव, है ना, वास्तविकता रियलिटी इस भौतिक जगत का, उसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। किसे कोई प्रश्न है, कैसा है, क्योंकि वो सॉन्ग बड़ा है तो उसमें एक घंटा लग जाएगा। मतलब ये उस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, जैसे संयुक्त परिवार होते थे ना, संयुक्त परिवार में माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, दो तीन जनरेशन साथ में रह रही, तो उस तरह से परिवार होना चाहिए। अभी क्या न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता तो है नहीं साथ में, है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि माता घर में होना चाहिए, संयुक्त परिवार होना चाहिए। नहीं, स्वर्ग में धर्म फॉलो करते हैं लेकिन उनको ये कंसेशन मिलता है, क्योंकि जो स्वर्ग योनि है वो क्या है, भोग की योनि है, और पृथ्वी पर क्या है, कर्म योनि है। यहाँ पे हमारा डिसाइड होगा ऊपर जाना नीचे जाना है, भगवत धाम जाना, वहाँ आपको भोग करने के लिए वो सुविधा दी गई, शरीर सुंदरता आयु बल वो सब भोग करने के लिए मिला।
नहीं,
राज तो ही करते हैं, चंद्रलोक पे करते हैं, लेकिन उस लोक के प्रभाव से, वो जो चंद्रमा की किरण है उसके प्रभाव से सब्जियां हैं जो फल हैं उनको पोषण मिलता है। ऐसे सूर्य लोक है तो सूर्यदेव तो उधर ही है, सूर्य लोक में राज्य कर रहे हैं, लेकिन सूर्य लोक का प्रभाव हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है।
हाँ
हाँ, पुरुरवा राजा, हाँ,
इनका जो राज जो राजा थे वो पृथ्वी पर थे ना,
हाँ,
तो फिर मतलब ये चंद्र लोक के राजा हैं तो इनको तो चंद्र लोक में,
नहीं ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे सूर्य वंश है तो सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आए तो भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर थे, तो वंश तो कहीं से चल, जैसे ब्रह्मा जी से वंश चालू हुआ तो ऐसे नहीं सारे राजा ब्रह्मलोक में होना चाहिए ब्रह्मा जी से सारी संतानें हो, सारे संतानें ब्रह्मलोक में हो, वो तो एक वो सिस्टम से आए हैं राजा। अच्छा प्रश्न है कि और स्वर्ग में भी सब सतोगुण में होते हैं तो लस्ट इतना लस्ट क्यों है? तो इन जनरल जो स्वर्ग है वहां पे पुण्य पुण्यशाली योनियां हैं, है ना, पुण्य कैसे होता है सतोगुण में रहकर होता है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या है, रजोगुण है, और नीचे के लोग में क्या है, तमोगुण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसका वो भी होता है, मिक्सर भी होता है। अभी कोई सतोगुण में है और वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं तो उसको देख के वो आकर्षित हो सकता है और दोबारा फिर रजोगुण में आ सकता है। तो ये मोड्स क्या है, अपने आप में चेंज होते रहते हैं। जैसे सतयुग है तो सतयुग में इन जनरल सब क्या है, परमहंस है। लेकिन सतयुग में हिरण्यकश्यप आया, सतयुग में हिरण्याक्ष आया, करेक्ट। जैसे कलयुग है तो कलयुग क्या, कलह का युग है। लेकिन उस युग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बोला 10,000 साल तक गोल्डन नहीं जाएगा। तो कलयुग के अंदर भी क्या है, सतयुग का मतलब टाइम आ सकता है और सतयुग के अंदर भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस आ सकते हैं। इन जनरल कलयुग का स्वभाव क्या है, दोष भरे हुए। इन जनरल सतयुग क्या है, दोषों से मुक्त है। इस तरह से
how lust can exist in mode of goodness. I listened in lecture that mode of goodness is favorable for progress in spiritual life.
तो जो लस्ट है वो गुडनेस में कैसे आ सकते हैं? गुड ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जैसे मैं आज सुबह उठा, मैंने स्नान किया, मंगला आरती में आया तो गुडनेस में आ गया, तो मेरे अंदर लस्ट आ ही नहीं सकती। जैसे हमने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया, हम गुडनेस से पैशन में चले जाएंगे, पैशन से इग्नोरेंस में चले जाएंगे, इग्नोरेंस से गुडनेस में जाएंगे। तो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं उसके आधार पर जो गुण है वो डिसाइड होंगे। इन जनरल गुडनेस में नहीं आएगा लेकिन वहां पर भी आ सकता है। जैसे उदाहरण है, एक थे ऋषि श्रृंग, है ना। तो जो ऋषि श्रृंग थे उनके पिताजी ने उनको हमेशा आश्रम में रखा और
जो उनकी ट्रेनिंग होती थी, जो भी प्रशिक्षण होता था, उनके आसपास कोई भी स्त्री नहीं आती थी। मतलब उनको करीब वो जब तक 15 से 16 साल उम्र तक पहुंचे तो उनको ये नहीं पता था कि स्त्री ऐसा कोई अस्तित्व कुछ होता है कि नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता था, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था उनके दिमाग में, है ना। तो क्या हुआ, जो जहाँ पर उनका आश्रम था उससे कुछ दूर एक राज्य था, तो वहाँ पे अकाल पड़ा। तो राजा के जो मंत्री हैं उन्होंने सलाह दी कि यहाँ पर एक बहुत ब्रह्मचारी है, शुद्ध ब्रह्मचारी है, उनको अगर आप इस राज्य में लेके आ जाएंगे तो यहाँ जो अकाल है वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो जो राजा है कुछ स्त्रियों को वहां भेजता है। अभी उसका 15-20 साल तक कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जैसे वो जाता है वहां, स्त्री जाती है तो वो जो जैसे वो पायल की आवाज सुनता है तो ऋषि सिंह क्या रहता है, एकदम से उसका मन परेशान रहता है। और फिर वो ऋषि सिंह को ले जाती है उस राज्य में और फिर बारिश आती है। कहने का मतलब क्या, उसका पूरा ट्रेनिंग हुआ लेकिन वो लस्ट ऐसी है कि वो गुडनेस में भी आ सकती। और अगर हम तीव्र भक्ति कर रहे हैं
तो अगर ऐसे जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रचार किया तो अमेरिका क्या है, पैशन इग्नोरेंस। लेकिन वहां रहते हुए भी हम लस्ट से प्रभावित नहीं हो सकते अगर हम तीव्र भक्ति कर रहे हैं तो।
क्वेश्चन है हाउ टू अंडरस्टैंड वुमन लाइक महारानी कुंती ओनली एज अ डिवोटी और एज अ वुमन विद ऑल गुड क्वालिटीज।
तो जो कुंती महारानी है शुद्ध भक्त है, है ना। और वुमन लाइक क्वालिटीज मतलब हम दोनों परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी क्या है, वो कुंती महारानी शुद्ध भक्त है और वो अपनी एक प्रार्थना में बोलती है ना, अथ विश्वे से विश्वात्मन विश्वमूर्ति सुकेशु में के मेरे जो दोनों वंश हैं, वृष्णी वंश है और मेरा दूसरा जो कुल है, उससे मेरे सारे जो स्नेह पास है उसको काट दीजिए आप, है ना। तो जो कुंती महारानी है वो स्नेह पास से नहीं फंसी हुई है, है ना। लेकिन कभी कभी शुद्ध भक्त क्या है, एक साधक की स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। वो साधक नहीं है, है वो शुद्ध भक्त, लेकिन शुद्ध भक्त साधक की स्थिति पे आते हैं और इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं कि एक साधक को इस संसार में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो उनके जो दोनों वंश हैं, है ना, कृष्ण है और स्वयं भगवान है, उनके पुत्र हैं, वो भी क्या है, शुद्ध भक्त है, अंतरंग भक्त है। लेकिन वो क्या बोले कि दोनों जो मेरे वंश हैं, है ना, जो मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, वहां से मेरा क्या है उसको पूरा काट दीजिए, जिससे मैं पूरी तरह से आपकी शरण ले सकूं। तो एक साधक की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन है वो शुद्ध भक्त, है ना। और जो उनकी क्वालिटीज हैं, वुमन लाइक जो नेचुरल क्वालिटीज है, वो पूरी तरह से उनमें, है ना। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण है देखने का। यस, नहीं नहीं पता नहीं क्या, वो तो हम तो इस जीवन का देख रहे हैं ना, आत्मा में और मन में तो वो इच्छाएं तो है ना। अभी किसी को खाना खाना सोना कोई सिखाता नहीं है, अब अपने आप होती ना। तो इसी तरह जो लस्ट है वो इस कंडीशन माइंड में अपने आप है, और जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है वैसे तुरंत बाहर आ जाती, सिखाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जो पशु होते हैं उनके लिए सेक्स एजुकेशन नहीं होती, लेकिन हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारे लिए सेक्स एजुकेशन होती है। पशु से भी नीचे चले गए अभी हम। और कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।